सत विश्वास सुख सार निधाना सत स्वरूप परसे भगवाना आनंद जीवन ताका होई दृढ़ विश्वास प्रभु नाम। हम सुख को तो जानते हैं, जो पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं इसके द्वारा जो भी हम संसार को अनुभव करते हैं, वस्तुओं को अनुभव करते हैं, उनका सेवन करते हैं, मन के अनुकूल जब वो वस्तु मिल जाती है तब तो उनको सुख की प्राप्ति होती है, और मन के प्रतिकूल मिल जाए तो दुख और बेचैनी की प्राप्ति होती है। और इस सुख दुख में हमारा सारा जन्म निकल जाता है, हमारा सारा परिवार भी खत्म हो जाता है इसी सुख दुख को भोगते भोगते। परंतु मन की हालत वैसी की वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि मन में जो आधार है कल्पना का आधार, और कल्पना जो हमारे पिछले संस्कार हैं चाहे वो पूर्व जन्म से लेकर आए या इस जन्म में तैयार किए, सारे सारे जो संकल्प हैं और जो उसके इंप्रेशंस हैं उसको संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों के कारण मेरे अंदर इच्छाओं की तरंगें पैदा होती हैं, और उसमें से कोई एक तरंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और उसके पूर्ण करने के लिए फिर हम संसार में प्रयास करते हैं। यदि पूर्ण हो गई तब हम उसको कहते हैं कि सुख मिल गया, यदि पूर्ण नहीं हुई तब हम कहते हैं कि दुख मिल गया या बेचैनी मिल गई। और ये प्रक्रिया पूरा जन्म चलती रहती है, और हर जन्म में इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है। लेकिन यदि मेरे अंदर केवल संसार का विश्वास है कि संसार में जितना पुरुषार्थ कर लूंगा उतना सुखी और संतुष्ट हो जाऊंगा, तब ये जो विश्वास है मनुष्य की बुद्धि के अंदर ये केवल उसको धोखा देता है, क्योंकि संसार में कोई मनुष्य ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो संसारी तरीके से जीकर संतुष्ट हो गया या जीवन की सफलता मिली है। जैसा कि अभी आप हिरण्य कश्यप का एग्जाम्पल सुन रहे थे, कितना तप किया होगा, कितनी सिद्धियां उसको प्राप्त हुई होंगी, लेकिन अंत क्या हुआ उसका? आप क्या इतनी मेहनत करोगे जितनी हिरण्य कश्यप ने मेहनत कर ली, जितनी रावण ने कर ली? लेकिन मन के द्वारा जो सुख भोगने की तमन्ना है ये मनुष्य का अपने साथ धोखा है। इसलिए वाणी कुछ दूसरी बात कह रही है कि सत विश्वास सुख सार निधाना सत स्वरूप परसे भगवान। तो कह रहे हैं कि आनंद जीवन ताका होई दृढ़ विश्वास प्रभु नाम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बुद्धि का जो निर्णय है कि संसार में शारीरिक जीवन व्यतीत करके मुझको तृप्ति मिल जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो हर मनुष्य जो संसार में आया है उसने अपने साथ इस संसारी विश्वास को लेकर अपने साथ उसने धोखा किया। जो चीज जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? तो इसीलिए जो मन का जीवन है, मन की इच्छा को मन के संकल्प को पूर्ण करने वाला जीवन है, ये मनुष्य का अपने साथ धोखा है। वो जो भूल जाता है कि इस देह के अंदर मेरा मन है, परंतु मेरा कहने वाला मैं भी तो हूं, मेरा कहने वाला मेरा मन है ना, मेरा कहने वाला मैं भी तो हूं। और मन के अंदर जो इच्छा उठ रही है, मैं क्या कहता हूं ये मेरी इच्छा, लेकिन उसका विश्लेषण करना नहीं जानता, उसका एनालिसिस करना नहीं जानता, इसलिए सारी जिंदगी मेरी धोखे में बीत जाती है। ना मैं अपने आप को कभी समझ पाता हूं, ना अपने दुख के कारण को समझ पाता हूं। तो जब मन मेरा है, इच्छा की तरंग मन में उठ रही है और मेरे अंदर भावना उठ रही है, यदि ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझको सुख मिलेगा। ठीक है, इच्छा पूरी होती है तो मनुष्य को सुख मिलता है, लेकिन एक सिद्धांत और दूसरा भी था जिसको आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं, कि वो कह रहे हैं हर सुख दुख में बदल जाता है। मैंने यदि अध्यात्म विद्या सीखी ही नहीं या उसकी जरूरत नहीं समझी तब ये सिद्धांत मैं कहां से सीखूंगा, फिर संसार में तो है ही नहीं। हर सुख दुख में बदल जाता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, आता जाता रहता है। इसका मतलब संसारिक सुख प्राप्ति के लिए जीना या इंद्रिय भोगों के द्वारा सुख प्राप्ति के लिए जीना, मनुष्य अपने साथ ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मैं बुद्धि हूं जिसका नाम जीव भी है, जिसमें जीवन है और जो निर्णय करता है। मन के अंदर इच्छा की तरंग तो उठ गई, लेकिन उसको पूरी करूं या ना करूं ये तो मैं सोचूंगा ना। किसी के मन में इच्छा उठ गई डकैती डालनी है, उसका घर का पैसा लूटना है, बड़ा सुख मिलेगा, उसने डकैती डाल दी, फिर क्या होगा? सब जानते हैं पकड़ा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है। तो सुख भोगने के लिए मैंने मन के संकल्प को सैंक्शन कर दिया कि ये काम कर लो और मैं मुसीबतें फंस गई। तो सत्पुरुष जो संसार में आता है वो आपके मन के लिए नहीं आता है, वो बुद्धि के लिए आता है, वो जीव के लिए आता है, वो मेरे लिए आता है। और वो प्रभु क्या देता है आपको? वो कहता है ये ठीक है कि इस शरीर में तेरा मन है, इस शरीर में तेरी इंद्रियां भी हैं और तू भी मौजूद है, लेकिन तू कभी ये नहीं सोचता इस शरीर में जान भी तो है, ये जिंदा भी तो शरीर है, ना तू इसको जिंदा रख सकता है ना तेरा मन इसको जिंदा रख सकता है। तो तेरे जिस्म में जो जीवन है, तेरे जिस्म में जो जान है, वो तो मैं हूं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो तो मैं हूं। तो जो तेरे जीवन का आधार है उसकी तेरी बुद्धि में कोई कीमत नहीं। जो मन तुझको हमेशा मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। तो आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लो, आप कभी संसार में संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसीलिए मन के आधार पर जो मनुष्य जीवन जीता है उसके जीवन को पशु जीवन कहा जाता है, क्योंकि पशु का जीवन कोई नहीं कह सकता कि सफल जीवन व्यतीत कर रहा है। तो मानव जन्म लेकर यदि मैंने सतविश्वास नहीं सीखा, जो कि वाणी कह रही है सतविश्वास सुख सार निधाना, निधान कहते हैं खजाने को, ट्रेजर को, सुख का खजाना है वो क्या? सतविश्वास। और आगे क्या कह रहे हैं कि आनंद जीवनता का होई, दृढ़ विश्वास प्रभु नाम पर होई। अब विचार करिए, बुद्धि का होता है दृढ़ विश्वास और नाम पुरोने की बात कहां कह रहे हैं? वो मन के अंदर नाम पुरोया जाता है, मन के अंदर मेरी वासना की तरंगे उठ रही हैं, सुख और दुख जो पैदा कर रही है मेरे लिए, जिसके कारण पूरा जन्म मेरा बर्बाद हो जाता है, बेचैनी लेकर संसार से विदा होता हूं। तो लेकिन मन में प्रभु का नाम क्यों याद करने लगे आप, जब तक कि आपकी बुद्धि का निर्णय ना बदले? तो बुद्धि का निर्णय क्या कि सत विश्वास सुख सार निधाना, यह बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। ईश्वर का जो विश्वास है अर्थात ईश्वर में आनंद है, क्योंकि आनंद जीवनता का होई, दृढ़ विश्वास प्रभु नाम पर होई। तेरे जीवन में आनंद आ जाता है, आनंद का संबंध ना सुख से है ना दुख से, और तुझे चाहिए यही। लेकिन अध्यात्म विद्या मैंने सीखी नहीं या कोई सिखाने वाला नहीं मिला, जो मिले माता पिता भी मिले, संगी साथी भी मिले, बहन भाई भी मिले, वो सभी संसारी मिले, इसलिए सारे जीवन में भटकता रहा और जीवन का सर्वनाश करके संसार से विदा हो गया। तो मन के अंदर प्रभु का नाम पुरोना था, जैसे सुई के अंदर धागा पुरोया जाता है, तो सुई की क्या कीमत? सुई की कीमत तभी है जब उसके अंदर धागा पुरोया हो, वो सिलाई करने लगे हो, बनी रहे। तो प्रभु नाम रूपी धागा जब इस मन रूपी सुई के अंदर परोया जाता है तब सुई की कोई कीमत है, नहीं तो सुई निरर्थक है। तो इसीलिए जो प्रभु का नाम है वो नाम नहीं है, वो खुद प्रभु है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभु मंत्र रूप में अवतार क्यों लेते, सत्पुरुषों के रूप में वो अवतार क्यों लेते। कृष्ण के रूप में अवतार लिया, राम के रूप में अवतार लिया, मंगत के रूप में अवतार लिया, कबीर के रूप में अवतार लिया, नानक के रूप में अवतार लिया, क्योंकि सिखाएगा कौन आपको, आप तो मनुष्य की ही बात समझते हो ना, ईश्वर को तो जानते ही नहीं। तो जिस शरीर से ईश्वर बात करे, जिस शरीर से ईश्वर आपका मार्गदर्शन करे उसको गुरु कहते हैं। तो संसार में जब मैं आया हूं तो इस मन के लोक से कौन मुझको मुक्त करेगा, केवल धरती पर एक सत्ता है ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, कोई भी नाम दे लो उसको, और उसका अवतार। तो अवतार को तो आप मन के अंदर पुरो नहीं सकते, तो अवतार की बात को उस मन सुई के अंदर धागे के रूप में पुरो सकते हो। तो इसीलिए जो भी गुरु आता है आपको सिमरन सिखाता है, उसकी जो भी आज्ञा है, उसका जो भी मंत्र है, तो उस गुरु से जो मंत्र प्रकट होता है वो खुद उसी गुरु की तरह अवतार होता है, वो चेतन मंत्र है, उसमें चेतना है, चेतना है, इसीलिए वो आपके मन को शुद्ध कर देता है। और अंदर जो जीवन रूप है जिसको हम आत्मा कह देते हैं, जिसको हम जीवन शक्ति कह देते हैं, मेरे रोम रोम में वो व्याप्त है, एक रोम को भी उस चेतना से खाली नहीं है। तो मेरा अस्तित्व तो ही उस चेतना के कारण है, ये तो मैं कुछ भी जानूंगा कैसे, आप तो जानती नहीं, कान भी नहीं जानते, शरीर में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो जानती हो। और यदि मैं ना जानू तो आप कहोगे तो पत्थर का डेला है, इसकी कीमत क्या, ये तो निर्जीव है। तो जानने वाला मैं हूं और जानने वाला प्रभु है, और दोनों ही इस देह के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरी बुद्धि संसारियों के साथ रहकर ऐसी मारी गई है, ये बिल्कुल सारी बुद्धि ही पत्थर बन गई, कि ना मेरा ईश्वर पर विश्वास है, ना मुझे ये पता है कि मैं देह के अंदर हूं, दोनों ही चीजों का मुझको बोध नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं लेकिन मेरी बुद्धि का निश्चय आज तक ठीक प्रकार से बना नहीं है। मेरी बुद्धि का निश्चय बिना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का संग किए हुए भी या सारी एजुकेशन लेने के बाद भी, मेरी बुद्धि का निर्णय एक ही है कि मैं देह हूं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं, मैं देह हूं। और देह का हर पदार्थ जड़ है, भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो जड़ है ना, इसकी तो चेतना नहीं। शरीर इन पदार्थों से बना है, इन तत्वों से बना है। तो जड़ देह जिसके कारण चल रही है, उसका जो कारण है वो परमेश्वर है। और मनुष्य जन्म आपको इसलिए दिया जाता है कि उस परमेश्वर के महत्व को ये बुद्धि समझे, क्योंकि और किसी योनि में बुद्धि नहीं होती, केवल मनुष्य जन्म में ये बुद्धि मिलती है। इसीलिए वो प्रभु आपके लिए अवतार लेकर धरती पर आते हैं और आपको ये ज्ञान देते हैं, फिर साथ में वाणी भी प्रकट होती है, शास्त्र भी प्रकट होते हैं, सीखोगे कहां से। तो यदि मैंने किसी भी पूर्ण गुरु का आसरा लिया, फिजिकली मेरी उससे भेंट नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दृढ़ विश्वास करके उस पूर्ण गुरु का आसरा लिया, तो उसकी जो उपासना पद्धति है वो मैं सीखूंगा, उसका जो ज्ञान है वो मैं सीखूंगा, और संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए वो मैं सीखूंगा, तो गुरु से ही तो मैं सीखूंगा, तब मेरा जो सांसारिक जीवन है वो ठीक चलेगा। तब मेरी बुद्धि में एक दूसरी बात आएगी कि मैंने मन आधारित जीवन व्यतीत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मन आधारित जीवन मानव जन्म का फेलियर है, मानव जन्म की बर्बादी है। वाणी यही तो कह रही है, आवे जावे मन औगनकारी, पाप कूप में नित वर तारी, संशय अनेक तुरंग उपजाए, धार चतुराई बहु कर्म कमाए, बिन विश्वास सब निह फल होई, विपता माही सब अवसर होई। यह है मन आधारित जीवन। तो बिन विश्वास सब निष्फल हो जाता है और विपता माही सब अवसर होई, और मनुष्य जन्म की जो आयु है वो विपत्ति में व्यतीत हो जाती है। हमें यहां कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, बड़े बड़े अच्छी सर्विस करने वाले भी होंगे, बड़े बड़े अच्छे परिवार भी होंगे, लेकिन आप अपने अनुभव से जरा विचार करके देखो कि आप अभी भी विपत्ति में फंसे हुए या नहीं फंसे हुए। एक दिन भी आपका चैन से बीतता है? कह सकते कि हाँ ये दिन मेरे जीवन का ऐसा था जो बिल्कुल चैन से बीता, कोई विपत्ति कोई चिंता फिक्र मुझको नहीं थी। पूरे जन्म में एक दिन भी आपके जीवन का ऐसा आपको याद नहीं आया। यदि विचार की आंख से देखूं तो वो दिन भविष्य में भी कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सत्विश्वास वाला जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, मैं मन पर विश्वास वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जिसको वाणी पशु जीवन कहते हैं। जिस कर्म के पीछे, जिस सोच के पीछे कोई अकल ही ना हो तो पशु जीवन नहीं, तो वो क्या है? मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है इसलिए कर रहे हो तो अपने बालक को देख लो ना, घर के अंदर 5 साल के बालक को देख लो, 10 साल के बालक को देख लो, 2 साल के बालक को देख लो, उसका तो मन आधारित जीवन है। तो उसके लिए किसकी बुद्धि काम करती है? फिर माता पिता की बुद्धि काम करती है, वो जानते हैं तो अज्ञानी है, इसकी बुद्धि का तो विकास ही नहीं हुआ। मन तो उसके पास भी है, इच्छाएं तो उसकी भी करती है, इच्छा पूर्ति होती है सुख भी उसको मिलता है, खुश भी होता है, नहीं होती तो रोता भी है। लेकिन आप जानते हो जब तक ये बालक है इसका जीवन भी खतरे में है और ये बेचैनी ही रहेगा। हर माता पिता जानता है जब तक ये बालक है, इसकी बालक बुद्धि है, तब तक इसने बेचैन ही रहना है, फालतू की इच्छाएं पाल लेगा, फिर उसकी पूरी करने के लिए रोता पीटता रहेगा। तो बच्चे के बारे में तो मैं बड़ी आसानी से निर्णय कर लेता हूं, इसका मन आधारित जीवन है। लेकिन अपने बारे में बूढ़ा हो गया धोखा ही खाता रहता हूं कि मेरा जीवन भी तो मन आधारित है। नहीं, मेरे पास वो बुद्धि है तो फिर एनालिसिस करके देख लो, आध्यात्मिक एनालिसिस मेरे बारे में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 5 विकार महात खुदाई, जले सकल संसार, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 तत्व के 5 परिणाम है। तो 5 विकार पर मेरा जीवन आधारित है। जैसे कि मान लिया मोह है, मोह क्या होता है? जो मेरा है उससे मोह होता है। बच्चा मेरा है, पैसा मेरा है, घर मेरा है, मित्र मेरा है, नौकरी मेरी है, तो परिवार में बच्चे से मोह होता है, सभी का अनुभव इस बात मामले में। लेकिन वो मोह माता पिता को कितना परेशान करता है, और जितना ज्यादा गहरा मोह होगा उतनी ज्यादा परेशानी होगी माता पिता। इसी प्रकार पैसे से मोह होता है, उसको लोभ कहते हैं, वो कितना परेशान करता है, कितना लोगों को बेईमान बना देता है, दूसरे का अधिकार भी छीनने को तैयार रहते हैं, ऐसा लोभ सताता है। क्रोध, सब जानते हैं कैसा अंधा होता है, बिना बात के भी पिटाई हो जाती है। तो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सांसारिक जीवन के प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका उत्पादन, इनकी खेती मैं करता हूं संसार में अपनी इच्छाएं पूरी करके। तो ऐसा जीवन कभी सुखी जीवन हो सकता है? इसको शांति वाला जीवन या आनंद वाला जीवन कह सकते? हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 विकारों के मोह में अज्ञान में मैं पिसता रहता हूं और बेचैनी लेकर पैदा होता हूं, बेचैनी लेकर जीता हूं, बेचैनी लेकर संसार से विदा हुआ, मिला क्या मुझे? तो इसीलिए बड़े भाग्य से किसी पूर्ण गुरु का आश्रय मिलता है, जैसा कि आप लोगों को मिला है। इस आश्रम में आने के कारण महाराज जी के ज्ञान से आपका संबंध बना, समझने का मौका मिला। अब यदि मैं उसको जीवन में अपनाऊ ही ना, तो महाराज कहते प्रेमी नाव भी तेरे हाथ में आ गई लेकिन फिर भी तू डूब गया, तो ये तो तेरा दुर्भाग्य है, तू नाव में सवार क्यों नहीं हुआ। नाव में यदि सवार हो जाता तो नदी पार कर जाता, बाढ़ में डूबता नहीं। तो गुरु रूपी मेरी नाव, मुझको नाव भी मिली, नाम रूपी पतवार भी मिली, इसको अपनाकर मैं पार हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं भोगों का स्वागत किया, पैसे का स्वागत किया, वो माया बहुत ही खट्टी करी। अपना जीवन की भी सफलता देखी और बच्चों के जीवन की भी सफलता देखी, ये कभी नहीं सोचा मैंने कि आज तक कभी मैं दो रात भी चैन से सो सका हूं। इस लक्ष्य को लेकर अपने लिए मैंने बनाया, बच्चों के लिए बनाया, क्या कभी दो रात भी मैं चैन से सो सका हूं, अर्थात मेरे जीवन में दो दिन भी चैन के नहीं बीते। यदि कहीं बीत भी रहे, पिकनिक मनाने भी गया हूं, पता नहीं कितने फिक्र वहां लगी। इसीलिए बात एक ही है कि बिन विश्वास सब निह फल होई, विपता माही सब अवसर होई। तो सारा जन्म मेरा विपत्ति में बीत गया, जो बचा है वो भी बीत जाएगा, इसलिए अभी भी वापस लौटाए, सत विश्वास धारण करें ताकि मन के अंदर प्रभु का नाम पुरोया जा सके, बुद्धि निर्णय लेकर नाम का सेवन करे ताकि ये मानव जीवन में जो बेचैनी भोग रहे हैं इससे बच सके। घट घट व्यापक आप प्रभु सच्चिदानंद परगास, मंगत तब परगट होवे जब गुरु सीख विश्वास। तो गुरु शिक्षा पर विश्वास करके अपने जीवन की जो दिशा है वो बदलें ताकि मानव जीवन सफल हो। धन्यवाद। सर्वप्रथम